ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। परमात्मा को पहचानते पहचानते शायद अपनी पहचान और गहरी होती जा रही है। जब स्वदर्शन किया यानी कि सुदर्शन चक्र घूमा और चारों युगों से हम घूमते आ रहे हैं कि मैं सतयुग में कहां थी। मैं यानी कि वो आत्मा जो बार बार परिवर्तित होती है, बार बार जन्म मरण के इस चक्र में आती है, तो सतयुग में हम कहां थे, फिर हम त्रेता में कहां गए, कैसे हम अपनी उस 16 कलाओं से संपूर्ण एक परफेक्ट बीइंग थे और परफेक्ट वर्ल्ड में रह रहे थे, जो कि हमें आज तक नहीं पता था। हमने ये सोचा था कि सतयुग में भी अच्छाई और बुराई साथ साथ होती है, लेकिन ये समझ में आया कि एक ऐसा युग डेफिनेटली होता है, क्योंकि मन यही मानता था जहां कंप्लीट परफेक्शन, कंप्लीट पीस एग्जिस्ट करती होगी। इस सफर में चलते हुए सुदर्शन चक्र को देखते देखते हम पहुंचे थे द्वापर में, जहां से बदलाव शुरू हुआ था। अगर हम कहें कि मनुष्य जाति का, और हम देवता से मनुष्य तक जो उतरने की जर्नी थी उसको देख रहे थे। इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारीज से शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
वेरी नाइस, बिकॉज इट्स आवर स्टोरी।
और हमें नहीं सुनी हुई थी स्टोरी।
हाँ। लेकिन फिर भी सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है।
हाँ।
यू नो, जैसे अपनी ही बात जिसको हम भूल गए थे, जब हमें फिर से कोई याद दिलाता है तो बहुत अच्छा लगता है।
हाँ, ऐसा हुआ था, ऐसा भी हुआ होगा।
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि बहुत सारी चीजें हम जो आज दिन तक सुनते आ रहे थे, एक्सेप्ट करते आ रहे थे, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क होता था कि ऐसा हो सकता है क्या। यू नो, व्हेन यू टू सी के कोई अष्टभुजाधारी है, कोई 10 सिर के साथ है, कोई हवा में उड़ रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, आप सुनते भी थे, अच्छा भी लगता था, सुनाते भी थे, सब कुछ करते थे, एंड फिर भी वन थॉट इन द माइंड वुड ऑलवेज से, इज दिस रियली पॉसिबल। एक तरफ से हम कह रहे हैं देवताएं हैं, फिर हम उनको हिंसा करते हुए भी दिखा रहे हैं, इज इट पॉसिबल।
हाँ, उन्हें उनके साथ हमारे, वही मैं कहती हूँ कि बार बार की उसको मारना पड़ता है।
हाँ,
यू नो, बुराई के ऊपर जीतने के लिए, और हर बार कभी भी मन ये मानता नहीं था,
और हमेशा दिखाया कि देवताओं को छोटी छोटी बात पे इतना क्रोध आ रहा है। सी, देवताएं हम कह रहे थे तो दे वो परफेक्ट बींग्स, तो फिर हम दिखा रहे हैं कि किसी देवता की इतनी रानियां थी, कुछ यू नो, सो एवरीवेयर जो कैरेक्टर था जिस हर बात में, वो देवी देवताएं थे, लेकिन जो चरित्र दिखाए जा रहे थे, एक तरफ से सत्यता और वो सारी बातें भी, लेकिन बहुत सारी और चीजें जो दिखाई जा रही थी वो देवताई चरित्र नहीं था। देवताओं के अंदर ये युद्ध की, क्रोध की, या दूसरे से बदला लेने की, या अपने यू नो हक के लिए जेलसी की एंड लस्ट की, ये सारी बातें नहीं हो सकती थी। सो समवेयर जब क्लैरिटी मिलती है और सत्यता पता चलती है, तो सच में देवताएं कौन है, यू नो, वो राइट पर्सपेक्टिव में देवी देवताएं समझ में आते हैं। आज तक हम देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, महिमा भी करते थे, लेकिन साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें कह देते थे जो उनके लिए सत्य नहीं थी, तो वो सारी भ्रांतियां भी क्लियर होना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल।
इट हैज बीन पुटेड इनटू आवर हेड कि देवी देवताएं जो हैं वो आपकी इंस्पिरेशन है, आपके लिए एक एग्जांपल है।
Yes.
अब उसी में क्या होता था कि इतनी सारी स्टोरीज उनके साथ जुड़ी हैं, तो हम भी अपने आप को जस्टिफाई करते थे कि उस देवता ने भी ऐसा किया था, उसने भी ऐसा किया, उस देवी ने भी ऐसा किया, तो ठीक है, फिर हमसे भी हो गया।
Right.
अच्छा, और फिर उनकी गलतियों का उनको फल मिलता भी दिखता था, तो हमने भी मान लिया कि चलो, you know, it's okay, it goes on and on.
Yeah. But yet at the same time, आज कलयुग में भी कलयुग के एंड में भी हम सब जो आत्माएं हैं, जो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इम्प्योर हैं, हमारी पावर बहुत डिप्लीटेड है, लेकिन फिर भी कुछ एक को छोड़ के अगर आप मेजोरिटी सोसाइटी को देखो, हम ऐसे कर्म अभी भी नहीं कर रहे हैं जो देवी देवताओं को करते हुए दिखाए हैं। मतलब रियली वी आर नॉट डूइंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। हम किसी पर गुस्सा आने पर शस्त्र नहीं उठा लेंगे उसको, यू नो, अटैक करने के लिए, या कोई आपको नहीं मिलेगा जिसकी इतनी सारी रानियां हैं। तो हम कलयुग के एंड में भी ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जो हमने सुना है कि वो सत्युग में कर रहे थे। एंड हम आज मनुष्य आत्मा, जिसको कई बार हम आम भाषा में कहते हैं, इसका चरित्र तो मनुष्य जैसा भी नहीं है, आज ये पशु जैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारा चरित्र वो देवी देवताओं की जो कहानियों में दिखाया जाता है उनसे बेटर है। आज भी हम किसी छोटे बच्चे की बात पर गुस्सा करके उसका सर नहीं काट देंगे, जो हम कहते हैं शंकर जी ने बेटे का सर काट दिया तो फिर वो गणेश बन गया। So it was just not matching, but somehow we never questioned it, or if we questioned it, then somebody just said, क्वाइट, दिस इज हाउ इट इज,
आंसर भी नहीं था. और यही था रबडिन था कि अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर सवाल नहीं है.
विश्वास है, श्रद्धा है, लेकिन साथ साथ विवेक भी. विवेक भी तो चाहिए. आज ठीक है, आज
हम इसी कारण हमारा विवेक कंटिन्यूसली मरता गया, क्योंकि जब इन पर सवाल उठाता था तब उसे चुप करवाया गया. तो फिर उसने सवाल उठाने फिर बंद.
लेकिन फिर आप उसका रिजल्ट देखो ना, आज हम अपने रिलीजन को राइट तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजन को हमने अच्छी तरह से समझा ही नहीं. समझा होता या उसको यू नो कैरी फॉरवर्ड किया होता अपने जीवन में, तो रिलीजन जो बातें सारी सिखा रहा था उसको हम इम्प्लीमेंट भी तो करते. आज हमें आंसर्स ही नहीं मिल रहे थे. आज इतना सारा यूथ क्यों नहीं रिलीजन को अपने जीवन में ले रहा है, और अब तो वो अपने पेरेंट्स को भी कह देते हैं आप करो ये सब. अब तो ये जनरेशन तो रेडी भी नहीं है वैसे कि सिर्फ भावना पे ही हम कर लेंगे. आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए. एंड एक्चुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शायद आज भी जो सभी भाई बहने सुन रहे होंगे उनको माइंड में बहुत क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि जो इतने सालों से बातें जो सुनी आई थी, या सालों से भी नहीं कहें जन्मों से सुनी आई थी, क्योंकि ये सारी जो हमने एपिक्स पढ़े सुने वो तो द्वापर युग से हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम कलयुग के एंड पे हैं. तो एक्चुअली अगर हम देखें आज हर आत्मा 2500 वर्ष से ये हर बात मानती आई है, और अब सडनली हमें कुछ और बात पता चलती है, तो इमीडिएटली सभी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क उठेंगे, और कई बार तो ये भी होगा कि ये ऐसे कैसे कह सकते हैं. स्टॉप, डोंट एक्सेप्ट दैट, डोंट एक्सेप्ट दिस, बट डोंट रिजेक्ट एनीथिंग ऑल्सो. जस्ट ओपन योर माइंड. हर चीज को आज दिन तक सिर्फ सुनकर एक्सेप्ट करते थे, फिर कोई कुछ और कहता था फिर उसको भी सुनकर एक्सेप्ट करते थे. सत्संग मतलब ही हो गया था जाना और यू नो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करना, विच इज गुड, रिस्पेक्ट है, भावना है, लेकिन विवेक, एंड फिर विवेक के साथ अनुभव. सी, विवेक से समझेंगे फिर जीवन में अप्लाई करेंगे फिर अनुभव होगा. आज सिर्फ एक चीज करें, अपने माइंड को ओपन करें, सिर्फ सुने, और उस पॉसिबिलिटी को सिर्फ एक्सप्लोर करें, अपने आप से चेकिंग करें कि सचमुच लेट मी पुट असाइड एवरीथिंग दैट आई हैव हर्ड टिल नाउ. यू नो इट्स बेसिकली परमात्मा कहता है यू नीड टू अनलर्न, यू नो क्लीन योर स्लेट, हैव अ क्लीन स्लेट, एंड अब सिर्फ एक थॉट क्रिएट करें हर एक आज, देवी देवताएं अगर थे तो कैसे होंगे.
सत्यू कैसा होगा, डेफिनेटली
इवन मेरे, लेट्स जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग एल्स. सारी बातें एक सेकंड के लिए किनारा करो, आपको आंसर खुद से मिलेगा, आपको किसी और से आंसर नहीं चाहिए. देवी देवताएं, 16 कला संपूर्ण आत्माएं, दिव्य आत्माएं, उनके आज वो नहीं है लेकिन उनकी आज जो मूर्ति बनती है उस मूर्ति के अंदर भी इतनी दिव्यता दिखती है. क्या वो इतनी दिव्य मूर्ति जो इतनी दिव्य है, आत्मा कितनी दिव्य होगी, तो हमने उनके चरित्र कैसे लिखे हैं. यू नो दिस इज वी नीड टू आस्क, एंड आई थिंक हरेक के पास उसका आंसर होगा कि देवी देवताएं जब थे तो कैसे होंगे, और जब वो थे तो पूरा समाज कैसा होगा, वो युग कैसा होगा, जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा कैसी होगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम आज देख रहे हैं कि एक टीम लीडर अगर वैल्यूज पे चलता है, या टीम लीडर एक कंपैशनेट लीडर है, पूरी टीम कैसी हो जाती है, हम आज कलयुग के एंड पे भी देख सकते हैं. सत्ययुग में जब टीम लीडर ऐसा होगा, जब वो राजा होगा जो श्री कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, पूरा समाज कैसा होगा. उसमें फिर डेविल नहीं हो सकता, वो आत्माएं ही सारी दिव्य है. एक्सप्लोर, ओपन योर माइंड, थिंक अबाउट इट, फिर देखो क्या आंसर आपको आता है.
अपने आपको जस्टिफिकेशन दी ना कि अगर उनमें भी ये सब कुछ था, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे भी जब ये लिखी गई कहीं ना कहीं कुछ कारण होंगे कि वो जो उस वक्त का समाज है उसको कुछ बात उसको कुछ चाहिए होगा.
नहीं, बहुत सिंपल चीज दिखानी थी आपको. जैसे द्वापर युग आया तो हमारे अंदर के जो वाइसेज हैं वो आए, और वाइसेज आए मतलब हमने कुछ गलत करना शुरू किया. लेट्स से लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब आई, जेलसी आई. लेट्स से द्वापर युग आया, भाई भाई में सपोज झगड़ा शुरू हुआ, नो नॉर्मल कॉमन समाज में. अब ये परिवारों को यूनाइट करने के लिए एक एपिक लिखा गया. अब उस एपिक में दिखाना था कि सत्यता की ही विजय होगी फाइनली. अब उसमें एपिक में वो नॉलेज को, उस विजडम को सुनाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए एक स्टोरी बनाई गई. स्टोरी में हमें कैरेक्टर्स लेने थे. कैरेक्टर हमें लेना है तो हम किसको लेंगे, विच सिंबलाइज ट्रूथ. ताकि आप उस कैरेक्टर को कहते ही आपके माइंड में फिर दो डाउट नहीं आएंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में।
ये अच्छा है।
अब लेकिन उस कैरेक्टर को आपने लिया एंड ही सिंबल ऑफ ट्रूथ, सिंबल ऑफ परफेक्शन, वो कभी अनजस्ट नहीं होगा दो लोगों के बारे में, एक्सेप्ट कर लिया हमने। लेकिन हम हमें दिखाना है कि उस कैरेक्टर ने सत्यता पर विजय प्राप्त की। एक्चुअली वो कैरेक्टर ने किस पर विजय प्राप्त करनी थी? अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी थी, क्योंकि सिखा तो हम वो ही रहे थे। समाज को क्या सिखाना था कि तुम्हारे अंदर कमजोरियां भी हैं, तुम्हारे अंदर गुण भी हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को विजय नहीं प्राप्त होने दो, अपनी विशेषताओं को, गुणों को, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। अब इसको दिखाएंगे कैसे?
अच्छा, तभी तो अब ये होता है कि तुम्हारे अंदर ही सुर है असुर भी है।
एब्सोल्युटली, तुम्हारे अंदर ही सुर है और असुर है, मतलब मेरे अंदर ही प्योरिटी भी है, लस्ट भी है, पीस भी है, एंगर भी है, ब्लिस भी है तो हर्ट भी है, कंटेंटमेंट भी है तो जेलसी भी है, लव भी है तो अटैचमेंट भी है। अब युद्ध मुझे किसके बीच दिखाना था? मुझे दिखाना था ओरिजिनल क्वालिटीज और वाइसेस के बीच, और ये मैसेज देना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, ये जो आपकी क्वालिटीज हैं, ये हमेशा आपके वाइसेस के ऊपर विजय प्राप्त करेंगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द वे टू लिव, ऑलवेज लिव विद योर क्वालिटीज, डोंट लिव विद योर वाइसेस,
लेट योर क्वालिटीज विन,
एब्सोल्यूटली, लेट देम विन। यस, तो अब हमें ये स्टोरी दिखानी है कि लेट योर क्वालिटीज विन, अंदर का युद्ध कैसे दिखाएंगे? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि देवी देवताओं ने युद्ध नहीं की, लेकिन जिन आत्माओं ने अंदर की युद्ध में विजय प्राप्त की वो देवी देवताएं हैं। सी, देवी देवताएं कौन है? वो आत्माएं हैं जिन्होंने वो संपूर्णता, वो परफेक्शन थी उनके अंदर, वो परफेक्शन कैसे अचीव की? बाय विनिंग ओवर देयर वाइसेस। लेकिन उसको समझाएंगे कैसे सबको? सो यू मेक अ लिटिल प्रेजेंटेशन, इट बिकॉज इट्स द इजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। इट्स आज भी कलयुग के एंड पे भी हमें कोई भी मैसेज देना है, आज सोशल मैसेज देना है आपको, तो कैसे सोशल मैसेज आता है? लेट्स से डाउरी डेथ, गर्ल अबॉर्शन, कितने आज सोशल मैसेजेस हैं। सबसे बेस्ट तरीका कैसे होता है जब वो सोशल मैसेज आता है? कोई उसको एक सीरियल के रूप में बनाता है, कोई उसको एक छोटी सी 2 मिनट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में बनाता है, उसमें कोई कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ही आप वो फिल्म देख लेते हो, आपको वो मैसेज याद हो जाता है। अगर आप सिर्फ मैसेज कोई बोलता जाए सीधा सीधा या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, लोग ध्यान नहीं रखते, लेकिन एक फिल्म के रूप में आ गया। अच्छा, उस फिल्म में भी आज भी आप देखो, आप कोई अच्छा सा एक्टर ले लेते हो, हाँ, आप कोई ऑर्डिनरी एक्टर लेते हो जिसको कोई नहीं जानते, तो वो फिल्म की उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता, इंडोर्स कर रहा है। अच्छा, इंडोर्स भी आप किससे करवाओगे? जिसने अपने जीवन में उन वैल्यूज को धारण किया हुआ है। अगर कोई एक्टर आज वेजिटेरियनिज्म को इंडोर्स कर रहा है, तो वो अपने जीवन में वेजिटेरियन होगा। अगर कोई एक्टर आज इंडोर्स कर रहा है कि से नो टू ड्रग्स, तो वो अपने जीवन में, तो जैसे ही वो एक्टर जो अपनी जीवन शैली भी वैसे जी रहा है, वो इसको इंडोर्स करता है, दैट्स इट, द मैसेज रीचेस टू द होल कंट्री और प्रोबेबली टू द होल वर्ल्ड। 1 मिनट यू सी दैट एक्टर स्पीकिंग दैट, and many many mindsets change, and people say, okay, from today I give up smoking, or I give up alcohol, or I donate blood, everything, it's making an impact. Aaj bhi hum wohi method use kar rahe hain, and we are seeing ki wo result create hota hai. To dwapar mein bhi wohi tarika use kiya gaya tha ki message kaise dena hai, social message dena hai, story ke roop mein dena hai, and indoors kisse karwana hai, jinhone apne jeevan mein un values ke upar jeevan ko jiya tha. एपिक्स बन गए और अभी तक वो अपना मैसेज दे रहे हैं, इट्स वर्किंग। बट कहीं ना कहीं हम उस बात को भूल गए और हमें लगा कि वो जो एपिक है वो ही रियलिटी में हुआ था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सृष्टि पर सत्युग के अंदर श्री राधे श्री कृष्ण होकर गए हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण होकर गए हैं, त्रेता युग आया, श्री राम श्री सीता होकर गए हैं, एब्सोल्युटली होकर गए हैं, लेकिन श्री राम श्री सीता के साथ रावण नहीं होकर गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन श्री राम और सीता को लेकर फिर जो हमने पूरा इतना सुंदर एपिक लिखा उसमें हमने बहुत सारे मैसेजेस दे दिए, भाई भाई कैसे होने चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, फिर हमने लव कुश दिखाए तो बच्चे कैसे होने चाहिए, और रावण का कैरेक्टर क्यों इंट्रोड्यूस किया कि वाइसेस अगर आएंगे तो इतनी पावरफुल आत्मा को भी वाइसेस कैसे कोलैप्स करते हैं। सीता का दिखाया ना एक छोटी सी अट्रैक्शन, क्या मैसेज दे रहे थे, तो उन्होंने ये दिखाया कि वो पावरफुल आत्माएं अगर छोटी सी अट्रैक्शन भी आएगी तो वो ये हो जाएंगे, लेकिन जब श्री राम श्री सीता एक्चुअली त्रेता युग में थे तब उनको कोई अट्रैक्शन नहीं आई थी जिनकी वजह से वो रावण आया एंड ऑल दैट हैड टू हैपन, और वो रो रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, श्री राधे श्री कृष्ण थे लेकिन श्री कृष्ण की 16,000 रानियां नहीं थी, श्री कृष्ण मटका नहीं फोड़ता था, मक्खन नहीं चुराता था, देवी देवता ये सब नहीं कर सकते हैं, श्री कृष्ण का कंस के साथ कुछ नहीं था क्योंकि कंस ही नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण वो परफेक्ट
भी एक्चुअली कोई रियल कैरेक्टर हुआ ही नहीं,
हुआ ही नहीं
था ही नहीं,
नहीं
रावण भी नहीं,
नहीं था रावण कंस, ये वो हमारे असुर हैं। सी हमें दिखाना है सुर की असुर पर विजय, देवताओं की असुरों पर विजय, मतलब दिव्य गुणों की आसुरी शक्तियों पर विजय जो अंदर है। सो ब्यूटिफुली इट वॉज प्रेजेंटेड एंड इट सर्व्ड इट्स पर्पस ऑफ गिविंग सच अ पावरफुल मैसेज, जो मैसेज आज भी जितने पॉपुलर सीरियल हुआ तो रामायण महाभारत, आज भी 2500 वर्ष के बाद भी वो इतना पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आज भी जो एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले करता है
उसकी पूजा करते हैं,
वो कैरेक्टर नहीं है लेकिन आज भी उसका इम्पैक्ट इतना है, तो द्वापर युग में उसका इम्पैक्ट कितना हुआ होगा, लेकिन टू रिमेम्बर कि वो कैरेक्टर्स को लेकर वो एपिक बनाकर एक सोशल मैसेज जो उस समय की सोसाइटी के लिए चाहिए था जो आज भी एप्लीकेबल है, लेकिन हमने थोड़ी सी सिर्फ छोटा सा जी चीज हम भूल गए, हमने सोचा ये ही रियल थी,
ये हुआ,
हमने एक एपिक एक स्टोरी को हिस्ट्री मान लिया कि ये ही हुआ, एज इट इज ये हुआ, एज इट इज ये नहीं हुआ, एज इट इज ये कैरेक्टर्स थे जो देवी देवताओं के थे, बाकी जो सारा बनाया गया वो टू गिव द मैसेज। दिस इफ वी आर एबल टू लिटिल सेपरेट वील बी एबल टू अंडरस्टैंड देवी देवताएं एज दे आर सपोज टू बी, नहीं तो हम ही आज उनकी बहुत ग्लानी करते हैं, हम कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन फिर हम उनकी ग्लानी भी कितनी करते हैं ऐसी चीजें बोलकर।
इट बिकम्स लाइक अगर हम अभी का देखते हैं कि श्री ये शिरडी के साईं बाबा होकर गए,
यस
ठीक है, 1918 में ही लेफ्ट हिज बॉडी,
एब्सोल्युटली।
अब हमें जो कुछ जो अब हम लिखते अब इतने सीरियल उनके बन रहे हैं जो आज के जीवन से जुड़ी हुई उनकी चीजों को, मतलब जो लोग जैसा भी क्रिएट करते हैं उसमें अब जो भी हो जो भी दिखाया जाए दैट विल बी अ फिक्शन, दैट विल बी
अ मिक्सचर ऑफ बोथ,
हाँ
इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ,
उनका कैरेक्टर
कुछ उनके जीवन से ली हुई बातें और कुछ वो मैसेज जो देना है, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज दिया ट्रुथ का पीस का वो मैसेज देने के लिए साथ में कुछ चीजें क्रिएट होती है।
और फिर हम ये सोच रहे हैं आज के कुछ साल बाद या अभी भी कि ये हुआ ही है, you know? उस टाइम पे ही ये हुआ या अभी भी ये हो रहा है।
एक्जैक्टली, अब जो आपने कहा शिरडी साई बाबा वो क्योंकि 100 साल पहले की बात है, उसमें अभी इतनी मिक्सचरिटी नहीं है, अभी भी वो जो सोर्स है ऑथेंटिक है, लेकिन अगर आप इसी बात को अगर आप शिरडी साई बाबा को 2500 वर्ष के बाद बनाइए अब तो तब तक क्या हो जाएगा, तब तक तो फिर बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस वो थे, यस उनके साथ उनकी क्वालिटीज थी, कुछ सारी बातें थी, लेकिन उनके साथ नेगेटिविटी नहीं थी। सत्युग और त्रेता युग में नेगेटिविटी नहीं थी, वो हमने द्वापर युग में सिर्फ समाज को थमाने के लिए, समाज जो बिखर रहा था
कि द्वापर में देवी देवता रहे ही नहीं ना,
नहीं द्वापर युग में कैसे देवी देवता
से चेंज हो चुके थे,
एब्सोल्युटली।
तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर में देवी देवता नहीं है,
देवी देवता नहीं है मतलब उस
देवी देवता जीवन उसमें नहीं
उस दिव्य रूप में नहीं है। सी वी हैव टू सी दिस एज अ जर्नी, टेक वन सोल, ठीक है, एक आत्मा है, परम धाम से सृष्टि पर आती है, फ्रेश और परफेक्ट है। जब वो इस धरती पर आती है वो फर्स्ट युग है, सत्युग है, आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट। सपोज इनको हम कहें श्री कृष्ण है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग। अब वो आत्मा शरीर छोड़ेंगी 150 वर्ष के बाद, दूसरा लेंगे, वही आत्मा फिर छोड़ेंगी फिर लेंगी, इट्स द जर्नी ऑफ द सोल। हाँ शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा वही है, वही आत्मा है। अब जैसे आत्मा शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, छोड़ती है दूसरा लेती है, उसकी प्योरिटी में थोड़ा 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 फर्क आता
है, कलाएं
कम होती है। जो आत्मा है सत्युग में वही आत्मा त्रेता में भी है, क्योंकि एक आत्मा जब इस सृष्टि पर आ जाती है तो फिर ऊपर नहीं जाती है वापस, ये परमात्मा ने बताया है, वंस ऑन द स्टेज ऑन द स्टेज टिल एवरी वन इज ऑन द स्टेज। इसीलिए पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है
और शरीर में ही होगी। कई बार कहते हैं ना कि वो नहीं
पशु में हाँ। दूसरे योनि में नहीं, परमात्मा हाँ। ने हमेशा कहा कि मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य चोला छोड़ मनुष्य चोला ही लेगी।
नहीं ये भी, और कई बार कहते हैं कि वो शरीर ही नहीं ले रहे, वो ऐसे ही है प्रोटेक्ट कर रहे हैं या जो कुछ भी है,
शरीर लेगी वो सभी। जो इतनी देखो जो आत्मा शरीर नहीं लेती है अभी भी जो हम सुनते हैं, वो आत्माएं होते हैं जिनके कुछ बहुत ऐसे कर्म होते हैं जिनकी वजह से वो शरीर नहीं ले पाते हैं, यू नो ऑल दोज थिंग्स। लेकिन जो इतनी दिव्य आत्माएं हैं, क्योंकि शरीर के बिना का जीवन आत्मा के लिए सृष्टि पर बहुत अच्छा नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू नो यू आर जस्ट देयर। तो जो इतनी दिव्य आत्माएं हैं उनको तो तुरंत शरीर मिलेगा, क्योंकि वो बस एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा लेंगे। और परमात्मा ने इतने सुंदर रीति से दिखाया है कि उस आत्मा को एकदम क्लियर होगा, यू नो कि अभी मैं ये कॉस्ट्यूम छोड़ रहा हूं और मेरा वो दूसरा कॉस्ट्यूम तो रेडी, क्योंकि हम 100% सोल कॉन्शियस होंगे। यू नो राइट नाउ इट्स सो डिफिकल्ट टू इवन कॉन्सेप्चुलाइज व्हाट वुड बी 100% सोल कॉन्शियस। वी जस्ट हैव टू सी कि आई एम एब्सोल्युटली अवेयर। इट्स लाइक जितनी अवेयरनेस हमें रोज अपनी ड्रेस की होती है उतनी अवेयरनेस हमें इस शरीर की होगी कि अभी ये ड्रेस पहनी है शाम को दूसरी ड्रेस पहननी है। जितनी अवेयरनेस हमें अपने इस ड्रेस की होती है ना आत्मा को शरीर की होगी, और उस आत्मा को बिल्कुल थोड़ा भी कुछ नहीं लगेगा, वो फीलिंग नहीं आएगी या दर्द नहीं होगा, उसको भी बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी कि पुरानी ड्रेस छोड़ी क्योंकि बस अभी हो गया उसका काम पूरा। एंड तब अटैचमेंट नहीं होगी ना परिवार से, प्यार होगा अटैचमेंट नहीं होगी। तो 150 वर्ष की आयु जब रीच करेंगे सब कुछ हैंड ओवर कर देंगे अपने बच्चों को सब कुछ, एंड इट विल बी वेरी क्लियर कि नाउ टाइम टू चेंज कॉस्ट्यूम विलिंगली। इसीलिए आज भी देखो कितने लोग कहते हैं कि डेथ को सेलिब्रेट करो, क्या कॉन्सेप्ट है वो, क्योंकि यू आर जस्ट चेंजिंग फ्रॉम वन कॉस्ट्यूम टू अनदर।
कितने सन्यासी और साधुओं के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने आप चुना मृत्यु का दिन और सोचा कि अब मैं छोड़ रहा हूं।
क्योंकि अभी भी आप देखो कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको फीलिंग आ जाएगी कि आज हमें जाना है या आज कल में, यू नो, एंड दे विल बी एबल टू टेल एवरीबडी व्हाट दे हैव टू से एंड देन दे विल लीव वेरी पीसफुली। इट्स अ साइन ऑफ अ गुड प्योर सोल। जैसे पवित्र आत्मा होती है उसको अपनी टचिंग हो जाती है कि अब टाइम पूरा हुआ। कौन लोग नहीं छोड़ पाते हैं इजिली, जिनका बहुत खिंचाव होता है, बहुत खिंचाव होता है, जिन्होंने अपना सब कुछ समेट दिया होता है अच्छी तरह से और सिर्फ परिवार से नहीं अपने शरीर से भी डिटैच्ड होते हैं, दे आर वेरी रेडी टू लीव एंड दे विल बी एबल टू लीव विलिंगली। जब कलयुग में ये हो सकता है तो सत्युग में कैसा होता होगा। सी कलयुग में जो सत्युग में था उसके एकदम बहुत स्लाइट ट्रेस हमें अभी भी दिखाई देती है, जब वो ओरिजिनल रूप में होगी तो कैसा होगा। तो वो जो आत्मा थी उसने फिर शरीर छोड़ा दूसरा लिया छोड़ा सृष्टि पर रही, वही आत्मा त्रेता में भी है और वही आत्मा द्वापर में भी है। शरीर वो नहीं है ना, नाम वो नहीं है,
रिमेम्बरेंस भी नहीं है।
रिमेम्बरेंस तो रहेगी
नहीं, पर सी
कॉन्शियस रिमेम्बरेंस नहीं, लेकिन मेमोरी रिकॉर्ड में तो सब कुछ आएगा ना। बेसिकली परमात्मा कहता है इस आत्मा के अंदर पूरे साइकिल का रिकॉर्ड होता है आपके पास। आज देखो हमें कितने आत्माएं दिखते हैं जिनको भविष्य दिखता है, राइट? अब जिस आत्मा ने इतने हजार वर्ष आगे का भविष्य प्रेडिक्ट कर दिया, कैसे प्रेडिक्ट कर दिया? वो आत्मा आगे का देख सकती थी, आगे का वो इसलिए देख सकती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी आगे की रिकॉर्ड। इट्स लाइक अ सीडी, वी रियली इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ सीडी जिसमें पूरे साइकिल का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, लेकिन जैसे जैसे आप उस युग में या उस जन्म में आएंगे वो वाला गाना बजेगा, बाकी गाने नहीं बजेंगे। यू नो मतलब आपका वो वाला रोल जो कहेंगे कि इमर्ज होता है, जैसे अभी आप कनुप्रिया, लेकिन ये कनुप्रिया जो ये रोल प्ले करने वाली है ये उस सीडी में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जो हम ये कंफ्यूज होते हैं ना, प्री डेस्टिंड भी है और डेस्टिनी भी क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ प्री डेस्टिंड है। ये सब कुछ प्री डेस्टिंड है, आत्मा के अंदर उसका पूरा रोल रिकॉर्डेड है, लेकिन पता नहीं है, मालूम नहीं है। जैसे जैसे आप उस समय पर पहुंचते हैं आपका वो वाला रोल इमर्ज होता है, लेकिन आपको फीलिंग ही आएगी कि जो आप कर रहे हैं वो होता जा रहा है, बिकॉज इट विल हैपन दैट वे। तो वो आत्मा द्वापर में आएगी, वही आत्मा आगे भी चल रही है। द्वापर युग में अगर आप उसी आत्मा को देखें, आत्मा है अभी भी प्योर है, ऐसे नहीं कि वो आत्मा, लेकिन अब उसकी प्योरिटी में थोड़ी सी कमी आ गई है, शरीर थोड़ा सा ऑर्डिनरी हो गया, अब उसको वो वाला उतना सुंदर शरीर नहीं मिलेगा जो सत्ययुग त्रेता युग के अंदर था। अब ये आत्मा क्या कैसा रोल प्ले करेगी, ये आत्मा अब कोई राजा बनेगी द्वापर युग का।
इट विल नॉट, अब देवी देवता नहीं रहे ना, बिकॉज आपकी दिव्यता
में थोड़ी कमी आ गई। सत्ययुग त्रेता और द्वापर में जो परमात्मा एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें समझाते हैं कि सत्ययुग और त्रेता युग में जो राजा होगा वो ही रिलीजन भी होगा। you know, आप देवी देवताओं को अगर देखो कोई भी चित्र में, तो उनको दो ताज दिखाते हैं, एक रतन जड़ित ताज द क्राउन ऑफ द रूलिंग पावर और एक लाइट का ताज पीछे। हर देवी देवता के पीछे ये दिखाते हैं, इसको कहते हैं डबल ताज। ये रूलर भी थे लेकिन ये रिलीजन भी थे, मतलब ये प्योर भी थे, धर्म भी थे। द्वापर युग में आने के बाद जो ये दो ताज है ये अलग अलग हो जाते हैं। द्वापर युग में जो राजाएं हैं उनको सिंगल ताज दिखाते हैं, रतन जड़ित क्राउन ऑफ रूलिंग पावर, और जो व्हाइट लाइट का ताज है वो धर्म स्थापकों और सन्यासियों के पीछे दिखाते हैं।
अब ये द्वैत हो गया
ना। अच्छा। आपका रिलीजन और आपकी रूलिंग पावर सेपरेट हो गई, धर्म और राज्य ये सेपरेट हो गया। सत्ययुग त्रेता में जो राज्य करता है वो ही धर्म भी फॉलो करता है। अब ये जो राजा है इसको धर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अब वो प्योरिटी नहीं होगी। तब जो द्वापर युग से राजा आएंगे उनको राय भी लेनी पड़ेगी, उनको स्पिरिचुअलिटी रिलीजन इसकी हेल्प भी चाहिए होगी, क्योंकि उनकी अपनी जो प्योरिटी होगी उसमें वो पावर नहीं रहेगी।
रहे ना राग रहे, ना द्वेष रहे ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जी ले, सम्मानित जीवन जी ले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार।
आपने कहा कि अगर हम सत्ययुग त्रेता को देखते हैं तो दोनों जो एस्पेक्ट्स थे, चाहे वो रूल करने के थे और स्पिरिचुअलिटी के थे, वो एक के पास थे। जैसे जैसे त्रेता खत्म हुआ द्वापर आया, उसमें ब्रेक हुआ।
क्योंकि हमेशा आप देखो किसी भी समाज में दो सत्ता ही सबसे पावरफुल है, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। जब धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के पास होगी तब आपके पास कोई टू
कॉन्फ्लिक्ट नहीं,
कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट तब आपका जो राज्य है वो धर्म पर चलेगा,
धर्म परायण राजा होगा,
एब्सोल्युटली. सो वो है कि जो राजा होगा वो कैसा राजा होगा, और फिर जैसा राजा
वैसी प्रजा,
वैसी प्रजा होगी. लेकिन द्वापर युग से धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दो अलग अलग हाथों
में, इसीलिए बार बार राजगुरु धर्मगुरु उनकी इतनी जरूरत पड़ी हर राजा को.
यस, लेकिन सत्ययुग और त्रेता युग में नहीं जरूरत थी, क्योंकि सत्ययुग और त्रेता युग में जो राजा था उसकी अपना जीवन ही धर्म पर चलता था, क्योंकि धर्म यहां बेसिकली द सोल वॉज कम्प्लीट. सी धर्म उस समय ये नहीं था कि यू नो इट्स नॉट एनी रिलीजन विच वी लुक एट टूडे. धर्म मीन्स आत्मा का धर्म. सी आज भी हम कहते हैं स्वधर्म. स्व का धर्म क्या है? स्व का धर्म है पवित्रता, शांति, प्यार. वो स्व के धर्म में उस पवित्रता की शक्ति. सी द्वापर युग से क्या आया? पवित्रता की शक्ति कुछ और आत्माओं के पास थी और राज्य की शक्ति दूसरी आत्मा के पास थी, लेकिन सत्ययुग में राजा के पास ही पवित्रता की भी शक्ति थी.
तो यही अभी हम बात ये कर रहे हैं कि वही आत्माएं सत्ययुग त्रेता से होते होते द्वापर में आई. तो अब आपने हमने कहा कि कुछ कमी होती गई, क्योंकि अब धीरे धीरे कमजोर थोड़ी हुई, कमियां आई थोड़ी सी. तो इनने कुछ ने आत्माओं ने राज्य की सत्ता को लिया. तो फिर इन्हीं में से कुछ थी जिन्होंने, जिनकी पवित्रता कायम रही और उन्होंने फिर धर्म की सत्ता को किया, वो no, कैसे हुआ?
जो आत्माएं सत्ययुग से आई हैं, सी इट्स लाइक आप अभी के समय पे देखो कि पांच बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने गेम को शुरू किया, ठीक है, अब तीन घंटे से वो खेल रहे हैं. तो पांच बच्चे तीन घंटे से गेम खेल रहे हो, तो तीन घंटे में वो थोड़ा थक गए हैं, मैले हो गए हैं, किसी को चोट वोट भी लगी है. तीन घंटे के बाद पांच बच्चे और ज्वाइन करते हैं गेम को. लेकिन जो तीन घंटे बाद पांच बच्चे और ज्वाइन करेंगे, वो बच्चे तो फ्रेश आए हैं ना अभी, तो वो तो फ्रेश है, एनर्जेटिक है, चार्ज्ड है, एंड बिल्कुल हेल्दी है, उनको कोई चोट वगैरह कहीं नहीं लगी है. तो सेम आप देखो इस सृष्टि चक्र में कुछ आत्माएं सत्ययुग के स्टार्टिंग से आई, वो सृष्टि पर ही रहेंगी, लेकिन कंटिन्यूअसली और आत्माएं भी सृष्टि पर आती जाएंगी. जो आत्मा सत्ययुग के स्टार्टिंग से होगी, तो द्वापर के स्टार्टिंग में वो आत्मा 2500 वर्ष से रोल प्ले कर रही है. 1250 वर्ष सत्ययुग, 1250 वर्ष त्रेतायुग. सो 2500 ईयर्स से जो आत्मा सत्ययुग के स्टार्टिंग में आई, इट्स बीन प्लेइंग इट्स रोल. तो वो आत्मा थोड़ी सी एकदम नहीं, लेकिन थोड़ी सी उसकी पावर कम हो गई है, उसकी प्योरिटी कम हो चुकी है. उस आत्मा के अंदर अब राज्य करने की शक्ति है, क्योंकि दो शक्तियां,
उसका अनुभव भी है ना,
अनुभव. दैट्स व्हाट. जो पवित्रता होती है वो आत्मा की होती है, जो राज्य होती है वो आपका स्किल होता है, वो आपका स्किल है. तो जो आपका स्किल है वो आपके पास अभी भी है, लेकिन जो आपकी इंटरनल पावर है वो कम हो चुके हैं. उल्टा उस स्किल में तो आप माहिर हैं, क्योंकि आप 2500 वर्ष से एक्चुअली राज्य कर रहे हैं. जो आत्मा सत्ययुग के स्टार्टिंग में, श्री राधे श्री कृष्ण या श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो सत्ययुग के स्टार्टिंग से राज्य करते हैं ना, वो हमेशा राजा ही बनेंगे. उनके अंदर राज्य करने का संस्कार है. सी जो आज हम देखते हैं कि जो संस्कार आपके पास होगा वही संस्कार आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, उस आत्मा के अंदर राज्य करने का संस्कार है, पवित्रता की भी शक्ति है, और कर्मों का फल है. सी सत्ययुग में आपने जो कर्म किया उसी के साथ आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो वो आगे राजा ही बनते जाएंगे, राजा बनते जाएंगे. द्वापर युग में आकर भी वो राजा ही बनेंगे, लेकिन द्वापर युग तक आते आते आत्मा की पवित्रता की शक्ति कम हो जाएगी. अब ऐसे समय पर परमधाम से कुछ आत्माएं सृष्टि पर आएंगी, एकदम क्लीन, फ्रेश, परफेक्ट, प्योर. मतलब वो बच्चे जो गेम को अब ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वो बच्चे जो गेम को बहुत समय से खेल रहे हैं. हम सब बच्चे हैं परमात्मा के, आत्मा भाई भाई है हम सारे. हम सब परम धाम से आए, पिता नहीं आया अभी तक.
अच्छा, द्वापर तक भी नहीं आया है?
द्वापर तक भी नहीं आया, बच्चे आए हैं. अब कौन से बच्चे आए? सन्यासी आए, जगतगुरु आए, मोहम्मद आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए. ये सब कौन से बच्चे थे परमात्मा के? ये परमात्मा के वो बच्चे थे जिनके अंदर पवित्रता की शक्ति थी, वो अभी आए एकदम.
परमधाम में जो भी है उसके पास पवित्रता की, साइलेंस की, शांति की
शक्ति है, लेकिन हर आत्मा का अलग अलग रोल है. प्योरिटी की पावर भी सबकी कॉन्स्टेंट नहीं होगी, नहीं तो द्वापर में जितने आएंगे वो सब